पृष्ठ संख्या 60, नवम बिंदु आकार विचार दंड नीति। आठवें बिंदु में कुरान के धर्मानुष्ठानों का वर्णन किया जा चुका है। यहाँ उनके आचार विषयक उपदेशों का संग्रह किया जाएगा। बाह्य आचारों में भक्षा भक्ष विचार प्रथम आता है। प्रायः सारे ही धर्म पृष्ठ संख्या 61 इस भक्ष्य हलाल अभक्ष्य हराम विषय पर कुछ व्यवस्था देते हैं। स्मृतियाँ कहती हैं पंच पंच नखा भक्ष्या। यहूदी धर्म कहता है तुम कभी रक्त न पीना। लेवी 7:26 चीरे खुर वाले तथा जुगाली करने वाले पशु भक्ष्य हैं। 11:3 पर और छिलके वाले जलचर भक्ष्य हैं। 1:9 स्वयं मरे या किसी जंतु द्वारा फाड़े प्राणी भक्ष्य हैं। 17:15 जिस प्रकार कुरान में बलि के योग्य पशुओं का वही लक्षण स्वीकार किया है जो यहूदी ग्रंथों में है, वैसे ही भक्षा भक्ष विषयक नियमों को भी उनसे ही लिया गया है, बल्कि इस बात को निम्न वाक्य द्वारा कुरान स्वीकार भी करता है। किताब वाले यहूदियों के लिए भेद्य और भक्ष्य, तुम्हारे लिए भक्ष्य हुआ और तुम्हारा उनके लिए। 5:1-4 यहूदियों पर जो कुछ हमने अभक्ष्य ठहराया था उसे हम बतला चुके। 16:15-8 भक्षा भक्ष्य, यहाँ भक्षा भक्ष्य के विषय में एक आयत उद्धृत की जाती है जिसका भाव कुरान में अनेक स्थलों पर दोहराया गया है। मुर्दार खून शूकर मांस जिसके ऊपर भगवान को छोड़कर दूसरे किसी देवता प्रतिमा आदि का नाम पढ़ा गया हो वह तथा दम घुटने से चोट से सींग मारने से मरे और जिसे अन्य किसी मांसाहारी प्राणी ने खाया हो यह सब तुम्हारे लिए अभक्ष्य है। किसी स्थान के नाम पर बलि चढ़ाना या पासा डालना पाप है। 5:1-3 कुरान ने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए जिनमें से खाते हो। 16:1-5 इस वाक्य द्वारा मांस भक्षण के विषय में अपनी स्पष्ट राय दे दी है, किंतु इहाम के 4 महीनों में शिकार खेलना भी मना किया गया है। 5:13-2 चोरी और हत्या के विषय में कहा है हे मुसलमानों दूसरे का माल जिस पर तुम्हारा हक नहीं मत खाओ सिवाय इसके कि प्रसन्नता पूर्वक आपस में सौदा हो गया हो। आपस में हत्या मत करो, निस्संदेह भगवान तुम पर दयावान है। 4:5-4 मद्यपान, मद्यपान अरब में उस समय इसका अत्यंत प्रचार था। कुरान ने कहा है हे मुसलमानों जब तुम नशे में हो नमाज में मत उपस्थित हो जब तक कि जो कुछ तुम कहते हो उसे समझने न लगो। 4:7-1 आठवें बिंदु में कहा गया है कि मुसलमान का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि नमाज में जाए यदि वह स्वस्थ है, किंतु नशे में वहां उपस्थित होने से पाप का भागी होना पड़ता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रीति से कुरान ने मद्यपान का निषेध किया, फिर भी आयत 2:27-3 में उसने जुआ और मद्यपान को महापाप कहा है। शरीर स्वच्छता के विषय में पहले कहा जा चुका है कुरान न घर छोड़ सन्यासी होने का विधान ही करता है न निषेध, किंतु ईसाइयों की प्रशंसा के समय उनके साधुओं का नाम जैसा पृष्ठ संख्या 62 प्रतिष्ठा पूर्वक लिया गया है उससे मालूम होता है कि विद्वान सदाचारी साधु का होना कुरान के विरुद्ध नहीं। न्याय व्यवस्था, सच्चे मुसलमान के लिए कुरान कहता है जो अपने स्त्रियों और अपने दाहिने हाथ की संपत्ति दासियों को छोड़कर अन्यत्र अपनी काम चेष्टा को रोकते हैं। 70:1-29:30 दासी या लौंडी को इस्लाम ने एक प्रकार की पत्नी ही माना है। स्त्री प्रसंग के विषय में कहा है रजस्वला होने के समय में तुम स्त्रियों से दूर रहो और उनके पास तब तक न जाओ जब तक वह शुद्ध न हो जाए। 2:28-1 3:14-1 वाक्य में कुरान ने सूद लेने का निषेध किया है। उस समय अरब की राजनैतिक अवस्था अत्यंत शोचनीय थी। देश भर में अव्यवस्था फैली हुई थी, शासन और सुव्यवस्था का नाम नहीं था। जब शांति प्रिय महात्मा मोहम्मद ने शांति व्यवस्था का प्रयत्न आरंभ किया तो उन्हें न्याय विषयक नियमों और व्यवस्थाओं की आवश्यकता जान पड़ी। ऐसी व्यवस्थाएं स्थान स्थान पर कुरान में पाई जाती हैं। उस समय लेन देन का कोई कागज नहीं होता था जिससे न्यायाधिकारियों को कठिनाई पड़ती थी, अतः कुरान ने 2:39-1 दस्तावेज लिखने का परामर्श दिया। दाएं भाग, बहुत से धर्मों में स्त्रियां दाएं भाग की अधिकारिणी नहीं समझी जातीं। इस्लाम ने उनको जहां अरब के इस व्यवहार से जिसमें उन्हें दासी या विलास सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता था निकाला, वहां उन्हें दाएं भाग की अधिकारिणी बनाया। यद्यपि उनका यह अधिकार पुरुष के बराबर नहीं है तो भी उस समय की अपेक्षा यही बहुत है। कुरान में कहा है माता पिता या संबंधी जो कुछ थोड़ा बहुत छोड़कर मरते हैं उनमें स्त्री पुरुष दोनों का भाग है। परमेश्वर कहता है तुम्हारी संतान में पुरुष का भाग 2 स्त्री के भाग के बराबर है। यदि केवल स्त्रियां ही 2 से अधिक हुई तो 2/3 उनका दाएं भाग होता है, यदि 1 है तो आधा। मृत पुरुष के संतान होने पर माता पिता में से प्रत्येक का 1/6 भाग। यदि मृत पुरुष निसंतान है और उसके दाएं भागी उसके माता पिता हैं तो माता पिता को 1/3। यदि कई भाई हैं तो माँ का 1/6 भाग है, किंतु यह उसके बाद जो कुछ के मृत पुरुष ने अपनी वसीयत में दिलवा दिया या कर्ज में पटा। 4-2-1 यदि वह निसंतान हो तो तुम अपने मृत पत्नियों के आधे के दायभागी हो, किंतु ससंतान होने पर चतुर्थ भागी तुम्हारा अंश है। यह भी ऋण पाटने और वसीयत पूरा करने के बाद निसंतान मृत पुरुष के चौथाई और संतान के अष्टमांश की अधिकारिणी उसकी स्त्रियां हैं। यह भी ऋण पट जाने और वसीयत पूरा हो जाने के बाद। 4-21 कलाला पितृपुत्रहीनता में जिन स्त्री पुरुषों के पिता पुत्र आदि दायभागी नहीं है, भाई या बहन है, तो दो में से प्रत्येक को छठा भाग, पृष्ठ संख्या 63, और यदि अधिक हैं तो सब एक तिहाई में साझीदार हैं। यह भी ऋण पट जाने और न हानिकर वसीयत पूरा हो जाने पर। 4-2-2 इसी के विषय में अन्यत्र भी कहा गया है, यदि कोई पुरुष संतान रहित मर गया और उसकी बहन है तो उसको उसकी संपत्ति का तृतीयांश है। इसी प्रकार भाई संतानहीन बहन का दायभागी है। यदि दो बहनें हुई तो उनके लिए संपत्ति का 2/3। स्त्री पुरुष बंधु लोग जो उत्तराधिकारी हों, उनमें पुरुष का भाग स्त्री से दूना होता है। 4-24-5 दंड यदि उत्तराधिकारी बालक है तो उसके अभिभावकों के लिए कहा गया है, जब तक बालिग नहीं हुए तब तक उनको सुधारते रहो, जब उनमें चतुरता देखो तो उनको उनकी संपत्ति दे दो, व्यर्थ व्यय में उसमें से खा न जाओ इस ख्याल से कि कहीं वे वयस्क न हो जाएं। यदि अभिभावक धनहीन है तो वह उसमें से उचित खाएं, किंतु जो संपन्न है उन्हें इससे बचना चाहिए। जब उनकी संपत्ति लौटाने लगो तो गवाह बनाओ। 4-1-6 यही नहीं आगे कहा है, जो अनाथों की संपत्ति अन्याय से खाते हैं वह पेट में आग खाते हैं और अब नर्क की आग में डाले जाएंगे। 4-1-10 कुरान ने अपराधों के अत्यंत कठोर दंड निश्चित किए हैं, यह ख्याल करके कि दंडों की भयंकरता अपराध की संख्या कम करती है। हाँ, मनुष्य के सर्वज्ञ न होने से कहा जा सकता है कि कितने ही समय निरपराधी भी न्यायप्रिय न्यायाधीश के हाथ से दंड पा जाते हैं। 1. चोरी का दंड जो पुरुष या स्त्री चोरी करे उनके हाथ काट डालो, यही उनके काम का फल है। 5-6-4 तौरेत लेविटिशियस 24-19-21 में मनुष्य हत्या करने वाले अंग के बदले अंग और प्राण के बदले प्राण लेने का विधान है। कुरान भी वैसे ही कहता है, प्राण के बदले प्राण, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, दांत के बदले दांत और घाव के बराबर का बदला। फिर यदि मार खाने वाले ने क्षमा कर दिया तो उसकी छुट्टी है। 5-7-2 व्यभिचार दंड 2 व्यभिचार के लिए कुरान ने मनु जी से हल्का ही दंड दिया है। परमेश्वर की व्यवस्था में उन व्यभिचारी व्यभिचारिणी दोनों पर तुम दया मत करो। व्यभिचारी और व्यभिचारिणियों में से प्रत्येक को 100 बेत मारो और उनकी यातना विश्वासी लोग देखें। 24-12 किंतु दासियों को इसी अपराध में उसका आधा दंड मिलना चाहिए। 4-4-3 सदाचार कुरान के अनुसार कृपणता भी एक अपराध है। एक जगह कहा है पृष्ठ संख्या 64, जो कृपणता करते हैं और दूसरों को भी वैसा करने के लिए सिखाते हैं, जो कुछ भगवान ने अपने कृपा से दिया उसे छिपा रखते हैं, ऐसे नास्तिकों के लिए महायातना तैयार की गई है। 4-6-4 किंतु साथ ही अपव्ययता के बारे में भी कहा है, अल्लाहु ला याही बबुल्लु मुसरिफिन। 7-3-6 भगवान फजूल खर्चों पर खुश नहीं रहता। विस्तार भय से अधिक न लिखकर 2-3 कुरान के आचार संबंधी उपदेश उद्धृत किए जाते हैं। 1. शुभ कर्म कर और क्षमा मांग ले, अज्ञानियों से उपेक्षा कर। 7-24-11 2. जो अपने ऊपर किए गए अन्याय का बदला लेवे उसके लिए कुछ कहना नहीं, कहना तो उन पर है जो लोगों पर अन्याय करते हैं और दुनिया में व्यर्थ धर्मात्मा होने की धूम मचाते हैं, उन्हीं के लिए घोर यातना है। जो क्षमा और संतोष करे तो उसका यह काम निस्संदेह अत्यंत साहस का है। 52:4-12-14 3. तुम्हारी संतान हमारे ईश्वर के समीप तुम्हें दर्जा नहीं दिला सकती। हाँ, जो श्रद्धालु और अच्छा काम करने वाले हैं उनके लिए दूना फल है। 34-5-1